शांति, ओम शांति। आज सुबह से आप सभी ने जीवन के उमंग उत्साह के लिए बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, लेकिन जैसे बहन ने कहा कि इन सब का मूल आधार अपनी वास्तविक पहचान को जानना और समझना है। श्रीमद् भगवद् गीता के अंदर अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा, जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना दिल शिकस्त हो गया, नर्वस हो गया, टेंशन में आ गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे कि अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? और उस समय उस मनस्थिति से बाहर आने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए भगवान ने सर्वप्रथम कौन सा ज्ञान दिया? दूसरे अध्याय में ही आत्मा का ज्ञान दिया। चौथे अध्याय में भगवान ने स्वयं का परिचय दिया। छठे अध्याय में ध्यान योग की बातें किया और इस तरह से एक एक आध्यात्मिक बात को सुनाते हुए 18 अध्याय तक उसको मोटिवेट कर दिया, जहां गीता का हर चैप्टर योग है। तो वो कौन सा योग था जिसको सुनने से ही या जिसका श्रवण करके प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति इतना मोटिवेट हो जाता है? ठीक इसी तरह अगर देखा जाए, आज के युग में मनुष्य जीवन भी एक संघर्ष हो गया है, जहां हर वक्त व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कभी परिस्थितियों से लड़ रहा है, कभी हालातों से लड़ रहा है, कभी समस्याओं से लड़ रहा है। कौन सा क्षण है जीवन के अंदर जब व्यक्ति को युद्ध नहीं करना पड़ रहा है? और युद्ध करते करते जीवन के संघर्ष में भी व्यक्ति निराश, उदास, हताश हो जाता है अर्जुन की तरह। और उस समय शायद अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, अब मैं और लड़ना नहीं चाहता। सारी क्षमताएं होने के बावजूद भी वो जीवन में हार मानना शुरू करता है, वहां तक कि कई लोग अपने जीवन को अंत करने का सोच लेते हैं। तो आत्मा का ज्ञान किस तरह से हमें मदद करता है जीवन के हर संघर्ष को विजय में बदलने के लिए? और उसके लिए जो भगवान ने योग सिखाया तो वो कौन सा योग था? आज की दुनिया में योग योगा हो गया और योगा सीमित हो गया एक्सरसाइज और आसन तक, परंतु जब भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई, तो वो कौन सा योग था और वो योग का मतलब क्या? तो योग को सिंपल शब्द में अगर देखा जाए तो योग माना जोड़, संबंध या मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, तो योग माना कनेक्शन। आज मनुष्य का संबंध भौतिक चीज वस्तुओं से है, और जब किसी के जीवन में भौतिकता आ जाती है तो कहते इसके जीवन में भौतिकता का योग है। इसी तरह हमारा संबंध समय के साथ है, और जब कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता है तो यही कहते हैं कि समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। इसी तरह हमारा संबंध व्यक्तियों से है, और कोई व्यक्ति से अगर मदद मिल जाती है तो कहते हैं ये व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर लाइफ में चलता ही है। किसी के जीवन में अगर कोई इष्ट देव की कृपा हो जाती है तो कहते हैं इसके जीवन में एक दैवी योग है। परंतु राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। लेकिन ये योग संभव तब है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो। हम भारतवासी इतना तो जरूर जानते हैं, मानते हैं कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसको आत्मा कहा जाता है, और जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इतना हर कोई जानता है। और क्या जानना है? और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जान करके फायदा क्या, प्राप्ति क्या? क्योंकि आज मनुष्य अपना टाइम वहां देना चाहता है जहां से कुछ प्राप्ति हो। तो आत्मा के ज्ञान से हमारे जीवन में क्या प्राप्ति है उसको देखते हैं कि फायदा है या नहीं है। तो जीवन को देखा जाए, जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो आप जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का जोड़ होता है, मिलन होता है। इस जीवन के अंदर वो आत्मा इस शरीर में कहां विराजमान है, अनेक मत मतांतर है। कोई कहते हार्ट में रहती है, लेकिन आज की दुनिया के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तो आत्मा कहां जाएगी? फिर भी व्यक्ति जिंदा है। कई लोग कहते हैं कि सारे शरीर में घूमती है, जिस समय जिस ऑर्गन का काम होता है वहां पहुंच जाती है। अब एक व्यक्ति देख रहा है, बोल रहा है, हाथ हिला रहा है, पैदल चल रहा है, उस वक्त आत्मा कहां जाएगी? तो जिस तरह एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर उसी स्थान पर बैठता है जहां से सारी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। ये नहीं कि रिवर्स लेना है तो पीछे भागेगा, आगे लेना है तो आगे जाएगा, साइड में लेना है तो साइड में जाएगा, नहीं। ठीक इसी तरह हमारे सारे शरीर का कंट्रोलिंग रूम ये मस्तिष्क है, और इसीलिए मेडिकल साइंस के द्वारा भी ये प्रमाणित है कि आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहती है। जो ये ब्रुकुटी है इससे ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे, वो आत्मा का एग्जैक्ट लोकेशन है जहां आत्मा निवास करती है और वहां से सारे शरीर को कंट्रोल करती है। इसीलिए सरफेस मार्किंग ये है, क्योंकि ठीक इधर से पीछे है। भारत के अंदर ये प्रथा जरूर है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो चमड़े की चीज को बाहर उतारते हैं, फिर अंदर जाकर तिलक लगाते हैं और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ के नमन करते। ये प्रथा चलती आई है, लेकिन कभी सोचा कि क्यों? आज चर्च में जाते लोग चप्पल पहन के जाते हैं, वहां तो नहीं निकालते, तो भारत में ही क्यों निकाला गया? वो चमड़ा तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा जिसका मनुष्य अभिमान करता है, वास्तव में उतारना है तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो। मैं फलाना फलाना नहीं, और फिर अंदर जाके तिलक लगाया, अर्थात मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं फलाना फलाना नहीं हूं। उस आत्म भाव में आने के लिए इशारा है, और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के, हे प्रभु, मैं आत्मा आपकी संतान आपको नमन कर रही हूं। कितना ऊंचा भाव है, लेकिन हम लोग ने कभी समझा ही नहीं कि चमड़े की चीज बाहर उतारना, फिर अंदर जाना, तिलक लगाना क्यों। और इसीलिए जहां व्यक्ति अहंकार का चमड़ा पहन करके ही अंदर जाता है तो प्राप्ति नहीं है, ना भगवान से उसका कनेक्शन होता है, ना उसके कहे गए शब्द ईश्वर तक पहुंचते हैं, और ना ईश्वर से कुछ प्राप्ति होती है। तभी कई बार कई लोग क्या सोचते, पता नहीं भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी भी या नहीं, ये डाउट क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि जानते हैं, अंदर से महसूस होता है कि मैंने जो कुछ कहा शायद भगवान ने सुना ही नहीं। दो वायर का कनेक्शन भी तब हो जब दोनों का ऊपर का रबर उतारा जाए, तब करंट पास होता है। अगर एक का उतारा एक का नहीं उतारा तो करंट पास नहीं होता है। ठीक इसी तरह ईश्वर को कोई आवरण नहीं है, कोई रब्बर नहीं है, और हमको अनेक प्रकार के अभिमान के रब्बर चढ़े हुए। अब हम कनेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करंट पास होगी होगा? इसके लिए हमें भी सारे रब्बर उतारना पड़ता है, लेकिन एक एक रब्बर उतारने की मेहनत करने के बजाय बहुत सिंपल तरीका भक्ति के अंदर कि अपने को आत्मभाव में स्थित करो, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, इस भाव में अपने आप को स्थित करो और फिर देखो कितना सुंदर अनुभव होता है। जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना पांच तत्व, इसलिए शरीर जीवन जीने के लिए वही पांच तत्वों की डिमांड करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए, क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देता है। एक्सेस नहीं पीते कल के लिए चलेगा। तो पांचों तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर की वास्तविकता है। और इसीलिए कुदरत ने सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान ये पांचों तत्व बनाकर रख दिए। कोई भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, अमेरिका वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, या हिंदू धर्म वालों को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं। एक समान पांचों तत्व सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए रख दिया। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, क्या जीवन जीने के लिए उसे भी कुछ चाहिए? या समझते कि आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? क्या समझते? शरीर को तो पांच तत्व चाहिए, शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? क्या कहेंगे? कुछ चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, शांति चाहिए। और बस, शांति होगी तो सब कुछ होगा, ऐसा? प्रेम चाहिए। और कुछ चाहिए? आनंद चाहिए। और भी कुछ चाहिए? जीवन जीने के लिए आत्मा को सात गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है, द एसेंस ऑफ सेवन वैल्यूज। शरीर जो है एसेंस ऑफ फाइव एलिमेंट्स, पांच तत्व का समूह है, लेकिन आत्मा सात गुणों का समूह है, जो हर इंसान को चाहिए। सारे संसार के कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी देश, कोई भी भाषा वाला क्यों ना हो, हर एक को ये सात गुण जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वही आत्मा की वास्तविकता है। तो सर्वप्रथम हर आत्मा को ज्ञान चाहिए। इसीलिए बचपन से ये प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। कौन सा ज्ञान चाहिए? आज विज्ञान चरम सीमा पर है, फिर भी अगर यही प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो, वो कौन सा ज्ञान है जो अमर बना देता है? जो प्रकाश की ओर ले जाता है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। ये आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि आज मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो कौन सा है? सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है मनुष्य में? अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है मनुष्य जीवन में। आज मनुष्य ने जो दुनिया में थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया, उससे अहंकार ही बढ़ता रहा, तो वो ज्ञान की ओर गया या अज्ञान की ओर बढ़ा? कहां बढ़ा? अज्ञान की ओर ही बढ़ा। इसीलिए प्रार्थना में गाना पड़ता है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि आज दुनिया की सारी लाइब्रेरी से जितने भी ज्ञान के पुस्तक हैं वो इकट्ठा किया जाए और उसकी होलिका जलाई जाए, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। जो गर्मी होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, जितनी रोशनी नहीं होंगी। और सही में आज वही हो गया है कि मनुष्य ने जो थोड़ा बहुत दुनिया का ज्ञान हासिल किया है, अहंकार की गर्मी जरूर चढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई। एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार में आना है ये ज्ञान नहीं आया। तो किस ओर बढ़े, ज्ञान की ओर या अज्ञान की ओर? अज्ञान की ओर ही बढ़े। इसीलिए ज्ञान चाहिए। क्योंकि नहीं तो आज देखो प्रैक्टिकल जीवन के अंदर कितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रहे हैं, कितने रिश्ते टूट रहे हैं इसी अज्ञानता के कारण। जहां ईगो क्लैश होता है रिश्ता खत्म, रिश्ता टूट जाता है। और आज कितने रिश्ते टूट रहे हैं, बाप बेटे के बीच में रिश्ता टूट रहा है, भाई बहन के बीच में रिश्ता टूट रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता टूट रहा है, भाई भाई के बीच में रिश्ता टूट रहा है कि नहीं? कारण क्या? ईगो। किसी से भी पूछो भाई ये रिश्ता क्यों टूटा, तो क्या कहते हैं, अरे इतना ईगो दोनों का अभी कहां संभाला जाए, साथ में रहना ही मुश्किल हो गया, आखिर टूट गया। तो अज्ञान के कारण ही सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। तो ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि उसी से ही अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, उससे रिश्ते टूटते जाएंगे, जीवन में टेंशन बढ़ता जाएगा, अशांति बढ़ती जाएंगी। तो अब क्या चाहिए ये आपका चॉइस है, कि आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में होना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पवित्रता भी चाहिए। कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद वो अलग हो जाते हैं, पूछा जाए भाई क्या हुआ, आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या कहते हैं, अरे बाद में पता चला इस व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था, बाहर से बड़ी सफाई वाली बात कर रहा था लेकिन अंदर में उसका मन मैला था, उसके मन के अंदर पवित्र भावनाएं नहीं थी, उसके विचारों में शुद्धि नहीं थी, उसके व्यवहार में शुद्धि नहीं थी, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा, हम दूर हो गए। इंसान को अच्छा कहां लगता है? जहां विचारों की शुद्धि हो, व्यवहार की शुद्धि हो, वाणी की शुद्धि हो, वहीं अच्छा लगता है। जहां हेरा फेरी हो, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो क्या कहते हैं, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, पता ही नहीं चलता है इसके अंदर क्या चल रहा है, कहते हैं ना, क्या कहता, खतरनाक। और जो अंदर बाहर एक है, जो अंदर है वही बाहर है, तो क्या कहते हैं, ये भगवान का बंदा है, इतना भोला है ना, जो अंदर होगा ना वही बाहर है, कोई हेरा फेरी नहीं, उसको भगवान का बंदा कहा और उसको क्या कहा, खतरनाक। क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, खतरनाक बनना चाहते हैं या? क्योंकि जो खतरनाक होगा एक दिन आएगा, सब समझ करके दूर हो जाएंगे, वो अकेला रह जाएगा। तो जीवन में अकेला रहना चाहते हैं या सबके साथ मिलके चलना चाहते हैं? बस, तो उसके लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। कि एक बच्चा जब पैदा होता है कितना इनोसेंट एंड प्योर है, सबको आकर्षित करता है। हम सभी का ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है? वही पवित्र इनोसेंट स्वरूप। लेकिन जैसे जैसे जीवन में बढ़ते गए, हम शुद्धि से अशुद्धि की ओर बढ़ गए। इसलिए कई बार व्यक्ति अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन में आता है, क्योंकि उसको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपनी वास्तविकता के तरफ कैसे जाए पता ही नहीं है, वो रास्ता मालूम नहीं है। इसलिए पवित्रता चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञान चाहिए, दूसरा शुद्धि चाहिए। जहां ये दोनों हैं, ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग और शुद्धि दोनों है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, उस संबंध में कभी प्रेम पनप सकता है? नहीं। तभी तो किसी ने सही कहा, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, लेकिन अफसोस ये ढाई अक्षर प्रेम का ही नहीं पढ़ पाए। और प्रेम के बदले क्या आ गया जीवन के अंदर? स्वार्थ आ गया। और जहां स्वार्थ की भी हद होती है ना, हर कोई पहचान जाता है और कहते हैं भाई जो बोलना है बोल दो ना, इतना क्यों घुमा फिरा करके कोशिश कर रहे हैं ये दिखावे की। अरे एक छोटा बच्चा भी होता है ना, जब माँ या बाप उसको ज्यादा प्यार बरसाना शुरू करते तो बच्चा भी बोल देते हैं क्या काम है बता दो, इतना प्यार बरसाने की जरूरत नहीं। वो भी समझ ही जाता है कि इतना प्यार अगर बरसा रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई मतलब है। स्वार्थ की दुनिया में सच्चा प्यार कहाँ है, है ना? तो इसीलिए कहा जहाँ अहंकार हो अशुद्धि हो वहाँ प्रेम कभी पनप नहीं सकता है। जहाँ अंडरस्टैंडिंग है, पवित्र भावनाएं हैं, वही सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव। और वही चाहिए आज हर एक को। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है। ये नहीं बड़े बुजुर्ग को सारे जीवन बहुत प्यार मिला, अब बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा? चाहिए प्यार, हर इंसान को चाहिए। अंत तक, जीवन की अंतिम घड़ी तक प्रेम चाहिए। और जहां ये तीनों है वहां शांति है। आज शांति क्यों नहीं है? टेंशन क्यों है लाइफ में? क्योंकि ये तीन चीज ही नहीं है। न अंडरस्टैंडिंग है, न शुद्धि है, न प्यार है, तो शांति कहां से हो सकती है? कई बार किसी को टेंशन में देखते हैं ना, और उसको पूछा जाए भाई क्यों इतना टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है, तो कहेगा अरे ये व्यक्ति इतना प्यार से बोल रहा है ना, यही टेंशन कर रहा है। भाई प्यार से ही बोल रहा है, फिर टेंशन क्यों होना चाहिए? तो क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, शुद्धि है नहीं, उसके बाद अगर प्यार दिखा रहा है तो जरूर कोई मतलब है, इसलिए टेंशन हो रहा है कि अब कौन सा मतलब है। शांति खत्म हो जाती है। और जहां शांति नहीं है वहां सुख कहां से हो सकता है? आज हर इंसान सुख जाता है, और उस सुख के लिए कितनी भौतिकता के साधन अपनाते जा रहा है। डनलप के गद्दे पर सोता है लेकिन नींद नहीं है, एसी में बैठता है लेकिन पसीना छूट रहा है। तो ये सुख सुविधा के सारे साधन अपना लिए लेकिन सुख नहीं है। और इसीलिए ये सुविधाएं भी कुछ समय तो अच्छी लगती है और कुछ समय के बाद लगता है इससे और कुछ आगे चाहिए, इतना काफी नहीं है। सुख क्यों चाहिए? किसी को दुख नहीं चाहिए जीवन में, सुख क्यों चाहिए? क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। शरीर को पाने क्यों चाहिए? क्योंकि ये शरीर की वास्तविकता है। तो आज हर इंसान सुख चाहता है, किसी को दुख नहीं चाहिए। और जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी फर्स्ट स्टेप वही नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में वो हंस नहीं पाते हैं। घर में अगर मुस्कुरा भी दिए तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछना चालू करते क्या बात है, आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। और अगर व्यक्ति बताना नहीं चाहता है और उसने कह दिया बस ऐसे ही क्यों मुस्कुरा नहीं सकते क्या, तो क्या कहते हैं, दिमाग ठीक है? हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन? माना मुस्कुराने के लिए भी वजह चाहिए। अगर वजह नहीं है, ऐसे ही मुस्कुरा दिया, तो लोग समझते इसका दिमाग ठीक नहीं है। ऑफिस में जाता है अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के, सारे इशारा करने लगते हैं, क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है, जो काम करवाना है करवा लो। लोग एडवांटेज लेना चालू करते हैं, इसलिए भी व्यक्ति टाइट होकर के जाता है, मुस्कुराता नहीं है, कोई एडवांटेज ना ले मेरा, ये हालत है आज की दुनिया की। और खुशी में रहना चाहता जरूर है, आनंद चाहिए, इसलिए भगवान के पास जाकर कहते हैं, हे प्रभु तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो, है ना। और लास्ट में शक्ति, भगवान के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, यही प्रार्थना करते हैं ना, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। वहां भी धमकी दे दी कि अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा, फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये हालत है, पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए किसी से लड़ाई करने की, नहीं आत्मशक्ति चाहिए। लेकिन आत्मशक्ति तो छोड़ो, आज कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, इसीलिए भगवान से ये प्रार्थना में कहते हैं, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास, आत्मविश्वास हमारा कम न हो जाए, है ना। इसीलिए भगवान से मांग, ये सातों चीज भगवान से ही मांगते हैं। अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाओ, हाँ प्रभु को ही कहते हैं। फिर दूसरा, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, प्रभु तू साफ कर देना, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैं मैला होता रहूं तू साफ करते रहना। भगवान भी पूछता है कब तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, कब तक मैले होते रहेंगे, कब तक हम साफ करते रहेंगे। अब उसने भी साफ करना बंद कर दिया है, ये मैले ही होते रहेंगे, कितनी बार साफ करेंगे, है ना। तीसरा कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद भी मिल जाएंगी तो बहुत है। फिर आगे कहा, हमको मन की शांति देना, सुख देना, दुख हरो सुख दो, हरी कहते हैं उसको, प्रभु को हरी कहते हैं, हरी मना दुख हरो सुख दो। और फिर कहा, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो, और इतनी शक्ति देना दाता। तो सातों गुण कहां से मांगते रहे, परमात्मा से, क्योंकि मनुष्य से तो मिलने वाला नहीं है, समझ लिया। मनुष्य से क्या मिलेगा, स्वार्थ, क्रोध, अशांति, दुख, पीड़ा, यही मिलेगा। इसलिए सोचा कि भगवान से ही मांगो अभी, लेकिन रोज भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ करके मांगते रहे तो देगा, देगा, स्रोत वही है, लेकिन मिलेगा तब जब कनेक्शन जुटेगा। कनेक्शन ही कट है तो आएगी कैसे, वहां से प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। दूसरे शब्द में कहो तो ये सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज है। आज एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है, तब दूसरे दिन काम करता है। अब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, उसको चार्ज कब किया था लास्ट, याद है क्या? भगवान को याद करना ये चार्ज करना हुआ नहीं, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना, उसका नाम है चार्जिंग। वो कनेक्शन तो आया ही नहीं, किसी ने बताया नहीं कैसे कनेक्शन जोड़ना है, तो चार्जिंग कैसे होगी, है ना। इसीलिए भगवान ने कहा, स्वधर्म में स्थित हो जाओ। पर धर्म दुख का कारण है, पर धर्म कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, ये पर धर्म है। ये दुख का कारण है। स्वधर्म में स्थित हो जा तो सदा सुखी हो जाएगा। अपनी वास्तविकता में स्थित हो जा। इसीलिए आत्मा का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि तभी हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होता है और तब हम उस आत्म स्वरूप में अपने आप को स्थित कर सकते हैं। यानी सारे आवरण हट जाते हैं, फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ो। वैसे बैटरी चार्ज करना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आज हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं बैटरी चार्ज करने का। वैसे अनजानेपन में लोगों ने बैटरी चार्ज करने का प्रयत्न किया। कैसे किया? संबंधों में अपेक्षा रखी। क्या कहा? ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे अंडरस्टैंड करे, ये व्यक्ति मुझे आनंद दे, बस इतना ही तो चाहा है। क्या कहता है मनुष्य? थोड़ी सी खुशी ही तो चाहिए। क्या ये भी हमारा हक नहीं है? थोड़ा सा सुख ही तो चाहा, इतना भी नहीं दे सकते? थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा, इतना भी नहीं दे सकते हैं? संबंधों में अपेक्षा रखी, लेकिन किससे? डिस्चार्ज बैटरी से। डिस्चार्ज बैटरी से अपेक्षा रखने से आपकी बैटरी चार्ज होगी? सोचने की बात है। मेरी बैटरी फुल चार्ज हो, उसके साथ अगर कनेक्ट करो तब तो आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाए। लेकिन एक डिस्चार्ज बैटरी के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे तो कैसे चार्ज होंगे? इसलिए संबंधों में अपेक्षा रखने के बाद मिला नहीं मिला। प्रिंसेस डायना थी, राजकुमारी थी, है ना? बट वॉज शी हैप्पी इन हर लाइफ? नहीं। क्या कमी थी उसके जीवन में? भौतिकता की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा के साधनों की कोई कमी नहीं थी। क्या चाहिए था? प्यार। और उस व्यक्ति से प्यार की अपेक्षा कर रही थी जो खुद प्यार की अपेक्षा किसी और से रख रहा था। कहां से मिलेगा? आज हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं, अपेक्षा नहीं रखो। क्योंकि अपेक्षा रखने जाएंगे तो दुख मिलेगा। लेकिन संसार का ये अनादि नियम है, जो देंगे वही वापस आएगा। आप किसी को ज्ञान बांटो, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, बांटने से बढ़ता है। आप किसी के साथ खुशी बांटो, बांटने से बढ़ेगी। आप किसी के साथ प्यार बांटो, प्यार बढ़ता है आपस में। बांटते जाओ, देते जाओ, उतना बढ़ता जाएगा। ये तरीका है। अपेक्षा रखने से नहीं मिलेगा, लेकिन बांटने से बढ़ता है, है ना? देखो दुनिया के अंदर हर चीज दे रही है। प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं, अग्नि दे रही है, वायु दे रहा है, बारिश दे रहा है, हर चीज दे रही है ना? वो तो छोड़ो। इसलिए प्रकृति के पांचों तत्व को देवता कहा के देने वाले। लेकिन मनुष्य की हर चीज बनाई हुई भी दे रही है। आज जिस हॉल में आप बैठे हैं, ये छत आपको दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, बारिश से, हवा से दे रही है ना? अच्छा, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी आराम दे रही है कि नहीं दे रही है? दे रही है। ये माइक आपको दे रहा है, आवाज पहुंचा रहा है, लाइट आपको दे रहा है, पंखा आपको दे रहा है। कौन सी चीज है जो नहीं दे रही है सिवाय मनुष्य के? मनुष्य ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, तो ये सब देवता हो गए, मनुष्य लेवता हो गया, है ना? अब एक सिंपल तरीका। इसलिए बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हुई। बैटरी चार्ज करने का सिंपल तरीका यह है कि आप अभी और दो दिन यहां है, दो दिन देने का काम करना,
बांटने का काम करना। हो सकेगा, मैं कोई चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही, आप किसी को सम्मान दो, सम्मान तो दे सकते हैं ना। अच्छा, आप किसी को सहयोग दो, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा, आप किसी को अच्छी बातें दो, कोई अच्छी बात शेयर करो, देने का काम करो। देखो आपकी खुशी बढ़ती है या कम होती है, देने के बाद आपकी खुशी बढ़ेगी या कम होगी, अनुभव करके देखो दो दिन में। अगर अच्छा लगे दो दिन देवता बन सकते हैं या देवता ही बनना है? दो दिन देवता बन सकते हैं, दो दिन देवता बन करके देखो। अगर अच्छा लगे तो जीवन भर देवता बन जाना। देखो बैटरी कैसे चार्ज होने लगेगी। देखो एक गाड़ी की बैटरी होती है ना, उसको भी चार्ज करने के लिए गाड़ी को चलाते रहना पड़ता है। अगर नई गाड़ी ला करके आपने गैराज में रख दी, साल दो साल चलाओ ही नहीं, बैटरी डिस्चार्ज। गाड़ी जितनी चलती रहेगी बैटरी चार्ज रहेगी। इसी तरह जीवन के अंदर भी ये सद्गुणों को जितना प्रवाहित होने दो, इसकी ऊर्जा को फैलने दो, व्यवहार में, कर्म में, रिश्तों में, संबंधों में, देखो आपकी बैटरी कितनी फास्ट चार्ज होती है। सिंपल तरीका है बैटरी चार्ज करने का, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? बस यही राजयोग है। राजयोग क्या है? आप अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए देने का काम, राजा लोग हमेशा देते हैं ना, देने का काम शुरू करो। देखो राजा भी बन जाएंगे और बैटरी फुल चार्ज होने लग जाएंगी। इसी का नाम तो राजयोग है, इसी का नाम तो राजयोग है। क्योंकि अपेक्षा रखने से दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, देने से सुख मिलेगा। प्रयोग करके देखो, यही राजयोग है। इतना सिंपल है, प्रैक्टिकल है। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? कर सकेंगे। बस यहाँ से जाने के बाद आप देना चालू करेंगे ना, आपके परिवार वाले भी सोचेंगे ये देवता बन गया। अरे भाई, तीन दिन माउंट आबू क्या गया, ये तो पूरा बदल ही गया। इसलिए कई बार कई लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें जो जाता है ना, जादू लग जाता है। अब ये ऐसा जादू लगे तो अच्छा है या बुरा है? हाँ, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? अब इसमें जादू क्या लगाया हमने, क्या जादू लगाया हमने? एक समझ दी, आत्मा का ज्ञान दिया और बैटरी चार्ज करने का तरीका बताया। अगर आपको अपील किया और आपने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया तो लोग क्या कहते हैं, वहां जाने के बाद पता नहीं क्या जादू लगाते थे हैं, बदल जाते हैं लोग। अरे बदल गया, लेकिन अच्छा बना या बुरा बना? अगर अच्छा बनता है तो फायदा ही है ना, तो नुकसान क्या है अगर ऐसा जादू लगता है? इसलिए हम कहते हैं, यहाँ हमने फैक्ट्री खोली है कौन सी, मनुष्य को देवता बनाने की। दो दिन में देवता बन जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद आप देवता बनकर बांटना चालू करेंगे तो देवता की फैक्ट्री हुई कि नहीं हुई? तो माउंट आबू क्या हुआ, मनुष्य को देवता बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, हैं? अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, ऐसे देवता अगर निकलते जाए तो कितना अच्छा है। तो ये है आत्मा का ज्ञान। दूसरा, लोगों ने तरीका सोचा, विभिन्न कर्म करो। कर्म करने से हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसीलिए आज लोग धन कमाते हैं। धन चाहिए जीवन में, किस लिए चाहिए? सोचते हैं धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसलिए धन चाहिए ना। करोड़पति को पूछ लो, सुख शांति आ गई तो क्या कहता है, अरे भगवान की दया से सब कुछ है लेकिन यही नहीं है। क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसलिए धन आ गया, सुख शांति नहीं आई। कई लोग शादियों पर जाते हैं, पूछो क्यों जाते हैं शादियों पर, पार्टीज में, कहते भाई समाज में रहना है तो सबके साथ निभाना पड़ता है, जाना पड़ता है। अरे भाई क्यों जाना पड़ता है, बोले तभी तो हमारा प्यार बना रहेगा सबके साथ। पूछो प्यार बना तो क्या कहते हैं, अरे एक को खुश किया दो नाराज हो गए, बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। कई लोग गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान करने क्यों जाते, कहते आत्मशुद्धि के लिए। पूछो आत्मशुद्धि हो गई, अरे ऐसे आत्मशुद्धि हो जाती थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को छोड़ दो, गंगा स्नान करा दो। इतना सहज तरीका अगर हमारे पास है तो जेल बनाने की जरूरत है क्या? हाँ, गंगा स्नान कर लो बस, छोड़ दो, शुद्ध हो गए। कई लोग सत्संग में जाते हैं, पूछो सत्संग में क्यों जाते हो, कहते हैं शांति के लिए, सुख के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। अच्छा ज्ञान आ गया, सत्संग सुनने के बाद घर में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना ये ज्ञान भी नहीं आता है। एक बार हमारा एक कार्यक्रम था कहीं पर, कार्यक्रम को थोड़ी देर थी, हम बैठे थे तो लोग आ रहे थे, उतने में लैंडलाइन फोन बजा, मैं स्वाभाविक वहां थी तो मैंने फोन उठाया, सामने से एक बच्चे की आवाज थी। बच्चे ने पूछा ये ओम शांति है, मैंने कहा हाँ ओम शांति है। बच्चे ने पूछा दीदी आज वहां कोई प्रोग्राम है, मैंने कहा हाँ प्रोग्राम है। बच्चे ने कहा दीदी मेरे मम्मी पापा वहां आए होंगे, मैंने कहा आपको बात करनी है, कहा नहीं बात नहीं करनी है, लेकिन आप उनको समझाना कि घर में शांति से कैसे रहना चाहिए, बहुत झगड़ा करते हैं, हमें टेंशन होता है। एक समय था जब माँ बाप शिकायत करते थे कि बच्चे बहुत लड़ते हैं, उनको शांति में रहना सिखाया जाए। आज वो समय आ गया है, बच्चे शिकायत करते हैं, माँ बाप बहुत लड़ते हैं, उनको शांति में रहने का सिखाया जाए। वास्तविकता है ये सात गुणों के इर्द गिर्द ही हमारा सारा जीवन चक्र है, उसकी प्राप्ति करने के लिए ही सारे कर्म किए जाते हैं। लेकिन ये सारे कर्म अनजानेपन से किए गए इसलिए प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पता ही नहीं, फिर खोज रहे हैं, इंसान खोज रहा है, कुछ चाहिए, क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, शांति चाहिए, कहां से मिलेगी? अरे कोई चीज थोड़ी है जो बाजार में मिल जाएगी, है ना? और इसीलिए तीसरा तरीका अपनाया, भगवान को याद करो, वही स्रोत है शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, तो वहीं से मिल जाएगी। इसलिए रोज प्रार्थना करते रहे, अरे कोई चीज थोड़ी है ऊपर वाला फेंकेगा और हमारे कटोरे में आ जाएगा, ऐसे शांति नहीं मिलती है। इसलिए कहा कि उसके लिए योग जरूरी है, कनेक्शन करना जरूरी है, और कनेक्शन करना जिसको आ जाए बस, फिर देखो फुल बैटरी चार्ज। रोज सुबह सुबह बैटरी चार्ज कर लो अपनी, सारा दिन देखो कितना सुंदर जीवन बीतता है, बहुत अच्छा जीवन बीतता है, बहुत अच्छा चलने लगता है। तो रोज सुबह सुबह चार्जिंग में जब व्यक्ति बैठता है मेडिटेशन के लिए, तो क्या कहते हैं पता नहीं उसको क्या भूत चढ़ गया है, ये रोज शांति में क्यों बैठ जाता है, पहले तो नहीं बैठता था, है ना? तो जीवन के अंदर इसकी आवश्यकता क्यों है? कई बार कई लोग सोचते हैं कि बहन जी अगर हमने बैटरी चार्ज कर लिया तो क्या फायदा, दुनिया में तो सारे लोग डिस्चार्ज बैटरी वाले ही भरे पड़े हैं, उनके संबंध में हमें काम करना पड़ता है, उसी वातावरण में जाना, वो तो बहुत जल्दी हमारी बैटरी डिस्चार्ज कर देते, फिर चार्ज करने का फायदा क्या, प्रश्न होता है ना, कि फिर क्यों चार्ज करें? दुनिया डिस्चार्ज बैटरी है, उसके संग में ही हमें रहना है, काम करना है, तो हम क्यों चार्ज करें फिर? देखो दुनिया के अंदर जितनी भी महान हस्तियां हो गई ना, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, मदर टेरेसा हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर को देखा, मुख्य प्रशासिका दादी को देखा, इन सभी हस्तियों के जीवन में किसी ने एडवांटेज लिया, किसी ने बैटरी डिस्चार्ज की, ये सब चार्ज बैटरी थे। और इसीलिए आज तक भी अनेक आत्माओं के लिए ये प्रेरक है, मोटिवेट करने वाले हैं जीवन के अंदर, उनके एक एक शब्द मोटिवेट कर देता है, इसीलिए उनको आदर्श मानते हैं कई बार कई लोग अपने जीवन के लिए। किसी ने उनका एडवांटेज नहीं लिया। ये सभी के जीवन में ये सात गुण बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। ज्ञान था सबके अंदर, आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता थी, प्रेम था, शांति थी, सुख था, आनंद था, शक्ति थी, फुल बैटरी चार्ज। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? तीन बहुत बड़े फायदे होते हैं बैटरी चार्ज करने के। तीन बहुत बड़े फायदे, कौन से तीन फायदे? सबसे पहला फायदा, हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। दूसरा फायदा, लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। और तीसरा फायदा, वातावरण को बदल सकते हैं। कैसे? स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात मुझे याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, वहां से जब भारत लौट रहे थे तो वाया लंदन होके आना था, और उस समय लंदन में एक सभा को संबोधित करना था। जब उस सभा में गए तो क्या देखते हैं कि गीता को सबसे नीचे रख दिया, बाकी सारे शास्त्र ऊपर रखे, टॉप पर बाइबल को रखा, और भरी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था तो क्या करता था? कैन यू इमेजिन क्या करता था? क्या करता था? लड़ाई झगड़ा करता था, गाली गलौज कर देता था, किताबों को फाड़ना चालू करता था, है ना, मारपीट आरंभ कर देता था, और हर मीडिया के न्यूज की हेडलाइंस में आ जाता था गीता का अपमान, और इतना तोड़ फोड़, इतना नुकसान, इतना लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होता था, भारत में क्या होता था? इनोसेंट लोग मारे जाते थे। ये डिस्चार्ज बैटरी का कमाल है। इसलिए दुनिया में जब भी कोई हंगामा करता है ना, समझ लेना चाहिए सबसे ज्यादा डिस्चार्ज बैटरी है, तभी ये हंगामा कर रहा है। चार्ज बैटरी कभी हंगामा नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद चार्ज बैटरी थे। उन्होंने क्या किया? मुस्कुराए और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं? लोग हंसने लगे, इस व्यक्ति को इतना भी पता नहीं कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे शास्त्र गिर गए। कहा, आपने तो गीता को फाउंडेशन में रख दिया, आज अगर गीता फाउंडेशन में न हो तो दुनिया का कोई धर्म टिक नहीं सकता है। सारी परिस्थिति बदल गई। डिस्चार्ज बैटरी वाला परिस्थिति का शिकार बनता है, चार्ज बैटरी वाला परिस्थिति को अपने अधीन कर देता है, मास्टर कर लेता है। आप लोग जीवन में क्या चाहते हैं? परिस्थिति के अधीन होना चाहते हैं या परिस्थिति को मास्टर करना चाहते हैं? मास्टर करना है तो बैटरी चार्ज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? यस, है ना। तीन दिन में आप देखना कितनी बैटरी चार्ज हो जाती है। आज सारा दिन सुनते रहे फिर भी सुनने की कैपेसिटी अभी तक है, बैटरी चार्ज है ना, चार्ज हो रही है ना। लोगों की मनोवृत्ति बदल गई। ये कौन व्यक्ति है जिसको गुस्सा नहीं आया, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े, है ना, पीछे चलने। लोगों ने गीता को समझना चाहा, पढ़ना चाहा कि गीता में ऐसी क्या बात है जिस कारण से ये व्यक्ति को गुस्सा नहीं आया, नहीं तो बहुत स्वाभाविक किसी को भी गुस्सा आ जाए। तो लोगों की मनोवृत्ति बदल गई। और वातावरण बदल गया भारत के प्रति, सम्मान की दृष्टि से देखना आरंभ किया। और तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे 100 युवक अपने जैसे मिल जाए, अर्थात फुल चार्ज बैटरी वाले, तो मैं इस दुनिया को बदल सकता। लेकिन अफसोस, उसको 100 युवक नहीं मिले। लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी चाहती है हमें सिर्फ, क्योंकि बहुत समय बीत गया ना, बहुत अधोगति में चले गए, तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी यही कहते हैं कि बस हमें 9 लाख चाहिए अपने जैसे चार्ज बैटरी वाले। तैयार है? हाँ तैयार है। फायदा पता चल गया तो तैयार है सब, है ना? तो रोज मेडिटेशन करेंगे। यस। स्वामी विवेकानंद क्या, महावीर स्वामी ने कितनों के जीवन को परिवर्तन किया, बदलाव लाए। महात्मा बुद्ध ने कितनों के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर को देखा हमने। आज ब्रह्मा कुमारी लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, जहां दुनिया में कहा जाता है कि दो बहनें इकट्ठी एक घर में नहीं रह सकती है, घर में फूट पड़ जाती है, वहां आज 40,000 बहनें मिलकर के एक ही मिशन को लेकर एक संस्था को चला रही है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? और उसका कारण क्या? क्योंकि सारे चार्ज बैटरी है। तो जब सारे चार्ज बैटरी है तो क्या होगा? वो संस्था फलेगी फूलेगी नहीं तो क्या, उसमें फूट थोड़ी पड़ेगी। इसलिए आज तक ये संस्था के संस्थापक जाने के बाद भी 80 साल हो गए, अभी तक कोई फूट नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि सब चार्ज बैटरी है। ठीक है, तो अभी चार्ज करें बैटरी। चलो 2 मिनट बैठेंगे परमात्मा की स्मृति में, आत्म स्वरूप में स्थित होकर के, और जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो अपने चिंतन को एक दिशा देते हैं, 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठते हैं। बहुत सुंदर एक गीत बजता है, उस गीत के भाव में अपने मन को ले चलेंगे।
परमात्मा सदाशिव मेरा
हम तुमको पाकर पाए गति सद गति उपहार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार।